नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन की शानदार बिक्री के दम पर भारत में जून तिमाही में रिकॉर्ड आय दर्ज की। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में कंपनी के प्रदर्शन से खुश हैं। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारतीय बाजार की क्षमता को देखते हुए अभी भी एप्पल की यहाँ बहुत कम हिस्सेदारी है। एप्पल की ताज़ा आय घोषणा में भारत के प्रदर्शन को प्रमुखता से दिखाया गया है। कंपनी ने बताया कि यहां शुरू किए गए स्टोर का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। भारत की क्षमता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुक ने कहा, आप जानते हैं कि हमने भारत में जून तिमाही में रिकॉर्ड आय हासिल की और हमने मजबूत दो अंकों की वृद्धि दर्ज की। हमने तिमाही के दौरान अपने पहले दो खुदरा स्टोर भी खोले। इस समय वो हमारी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एप्पल ने कहा कि वो चैनल बनाने और सीधे उपभोक्ताओं के लिए ऑफर लाने में अधिक निवेश करना जारी रखेगा। कुक ने कहा, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और हमें वहां वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और हम वहां अपनी वृद्धि से बहुत खुश हैं। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि स्मार्टफोन बाजार में अभी भी उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, इसलिए यहाँ एप्पल के लिए एक बड़ा अवसर है। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक सीमित दायरे में था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि डॉलर सूचकांक में गिरावट और सकारात्मक एशियाई मुद्राओं के कारण रुपये को कुछ मजबूती मिली, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से निवेशकों को निराशा हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 82.73 पर खुली। शुरुआती कारोबार में इसने 82.77 के निचले स्तर और 82.72 के उच्चतम स्तर को छुआ। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 82.74 पर बंद हुआ। इसी बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14% गिरकर 102.40 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.16% बढ़कर 85.28 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। आईटी कंपनियों में खरीदारी और मिले जुले वैश्विक रुझानों के बीच शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी आई। बाजार इससे पहले लगातार 3 दिन गिरकर बंद हुआ था। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 300.1 अंक चढ़कर 65,540.78 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 105.9 अंक बढ़कर 19,487.55 पर था। सेंसेक्स के शेयर में टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन और आईटीसी में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक लाल निशान में चले गए। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 317.46 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.12% चढ़कर 85.24 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। सऊदी अरब ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती सितम्बर तक जारी रखेगा। कच्चे तेल की सुस्त पड़ती कीमतों में तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन अब उसने सितंबर के अंत तक ये सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। सरकारी संवाद समिति सऊदी प्रेस एजेंसी ने ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर तेल उत्पादन में इस कटौती की मात्रा बढ़ाने के साथ समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सऊदी अरब के इस अधिकारी ने कहा कि हमने ये अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती तेल निर्यातक देशों के संगठ एवं सहयोगी देशों के एहतियाती कदमों को मजबूती देने के लिए उठाया है। तेल बाजार को स्थिर एवं संतुलित रखने के लिए उत्पादन में कटौती की जा रही है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए चीज़ें सुगम बनाने के उद्देश्य से अपने सभी स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन और काउंटरों पर UPI से भुगतान करने की सुविधा दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य टिकट सेवा और यात्रा को डिजिटल और निर्बाध करना है। बयान के अनुसार यात्री अब अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज या मेट्रो के लिए QR टिकट को खरीदने का काम अपने स्मार्टफोन पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप के माध्यम से कर सकेंगे, जैसे वो दैनिक जीवन में मॉल दुकानों पर इसका उपयोग करते हैं। DMRC ने UPI सेवा नोएडा और गाजियाबाद खंड में चुनिंदा टिकट वेंडिंग मशीनों पर 2018 में शुरू की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।